శ్రీ చైతన్య మనోభిష్టం స్థాపితం యేన భూతలె స్వయం రూప కదామయం దాతి సౌదాంతికం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద సద్వైత గదాధర శివా సద్ పౌర భక్త హరే కృష్ణ 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 హరే హరే हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन आता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस का वर्णन भी होता है। सो प्रकृति के तीन गुण जो है वो ऊपर की नीचे की शुभ अशुभ सब प्रकार की ब्रांच को नरिशमेंट देते हैं। प्रकृति के तीन गुण ऊपर की और नीचे की ब्रांच मोर और लेस इट इज समथिंग लाइक जो नीचे की ब्रांच है उनको तमोगुण के साथ कनेक्टेड की जाती है और ऊपर की जो ब्रांचेस है वो रजोगुण या सत्वगुण के साथ उसका वर्णन आता है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे एक्स्ट्रा रूट्स भी है उस अश्वत्थ वृक्ष के। तो ये सारे जो वृक्ष है उनको जीवात्माओं के कर्मों के साथ उसका तुलना किया जाता है और उसमें से कुछ शुभ है कुछ अशुभ है कर्म। 16वें अध्याय में दैवी गुण के माध्यम से किस तरह से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है और किस तरह से आसुरिक जो गुण है वो लोगों को क्रमशः निम्न प्रकार की योनियों तक ले जाते हैं, ऐसे दो वर्णन ऐसे भगवद गीता में ऐसी दो चीज बहुत सारी है ना। दो चीज भगवान ने बहुत जगह बताया, दो चीज कोई बताना चाहता है दो चीज भगवद गीता में। जैसे यहाँ पर 16वें अध्याय में दो चीज है, देवी प्रकृति है और आसुरी प्रकृति, ऐसे कई जगह पर दो दो चीज है, दो प्रकार के लोग, दो प्रकार की श्रद्धा, दो प्रकार की निष्ठा, ऐसे हाँ ये है इसमें। ये 16वें अध्याय का है शीर्षक, देवी प्रकृति आसुरी प्रकृति, फिर सुकृति न दुष्कृति न, फिर भगवद गीता में कई जगह पर है ना। जैसे नहीं विशेष रूप से बड़े रूप से जैसे दो प्रकार की निष्ठा आगे के चैप्टरों में थी, कर्मयोगी ज्ञान योगी संख्या नाम कर्मयोगी ने योगी नाम कर्मयोग और ज्ञान योग। फिर भगवान ने कहा कि दो प्रकार के जीवात्मा होते क्षर अक्षर के बच्चा, दो प्रकार की प्रकृति है अपरे स्तन्यम प्रकृति विधि में पराम, वो दो प्रकृति है। फिर भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के क्षत्रज्ञ है, एक पूरा समग्र सृष्टि का और एक व्यक्तिगत क्षत्रज्ञ। सो इस तरह से दो प्रकार के मानने वाले हैं, एक साकार की उपासना करने वाले और एक निराकार की उपासना करने वाले, उसमें से श्रेष्ठ। तो ऐसे भगवान कई जगह पर बताया है दो, और उसमें से श्रेष्ठ कौन सा है ये भगवान बताते हैं। सो यहाँ पर भी भगवान कहता है कि दो प्रकार की प्रकृति है, एक तो है देवी प्रकृति है और दूसरी है आध्यात्मिक प्रकृति, देवी प्रकृति। मैं एक्चुअली वो उसमें था माइंड में कि वो भगवान कहते हैं ना तद्धाम परम मम, आई वाज इन दैट मूड। सो ब्रेक डाउन ऑफ द 16th चैप्टर, 16वें अध्याय का ब्रेक डाउन इस तरह से है कि पहले जो 6 श्लोक है सेक्शन 1 में उसमें देवी और आसुरिक गुणों का वर्णन है। फिर 7 से 20 आसुरिक प्रकृति का वर्णन है, आसुरी प्रकृति। छोटा अध्याय बहुत छोटा है, 7 से 20 और फिर 4 श्लोक 21 से 24। हाँ चुनाव the choice, escaping to the supreme destination, param pad ki prapti ke param prapti param param pad ki prapti ka chunav. So विशेष करके इस अध्याय में यही गुणों का वर्णन आता है बार बार, देवी प्रकृति और असुर प्रकृति. अभी इसमें 26 गुण पहले श्लोकों में है, सो मे बी समबडी कैन रीड टेक्स्ट नंबर 1 फिर साथ में क्या
1, 2, 3
हाँ 1, 2, 3 पहले तीन में 26 गुण है, पढ़िए.
भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं.
तो 26 गुण है यहाँ पर, 26 का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वैष्णव की भी 26 क्वालिटी है, तो यहाँ पर दैवी गुण ये 26 क्वालिटी है इसकी. और विशेष करके संपदाम दैवी में ऐसा भगवान कहते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, एक पैराग्राफ हम पढ़ सकते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द 15th चैप्टर, वहां से पढ़िए वन पैराग्राफ.
अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी, उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी. नवे अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है. अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सदगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पद में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं, और ऐसे कार्य को देवी प्रकृति कहा जाता है. जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पद पर अग्रसर होते हैं. इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती. उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पोषी योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं. इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं असुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं. वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं.
यस, सो भगवान यहाँ पर उसके लाभ और हानि भी बता रहे हैं. ऐसा नहीं कि केवल गुणों का वर्णन है, लेकिन साथ साथ में लाभ और हानि भी बताई गई है. और प्रभुपाद के तात्पर्य में नीचे दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद ऐसा भी लिख रहे हैं कि अधिकतर ये सारी जो क्वालिटीज है वर्णाश्रम से विभाजित हुई है. चार अलग अलग जो आश्रम है उसके अंदर ये अधिकतर विभाजित है, वर्ण और आश्रम दोनों के बीच में. सो अगर हम केवल आश्रम और वर्ण के आधार से इसको देखें तो इसमें से अधिकतर जो क्वालिटीज है वो सबको अप्लाई होती है, अधिकतर सबको अप्लाई होती है. प्रभुपाद एक लेक्चर्स में बताया प्रभुपाद ने कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटीज है इसके ऊपर प्रभुपाद ने अधिक कमेंट किया है. जैसे पहली तीन क्वालिटीज जो है वो सन्यासियों के लिए है, अभयम आत्मसंशुद्धि, सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, और तीसरा
ज्ञान.
तो ये विशेष करके सन्यासियों के लिए है. इसका अर्थ नहीं, ये नहीं होता कि ये दूसरे के लिए अप्लाई नहीं होती, विशेष करके सन्यासियों के लिए है ये इसका अर्थ होता है. अभयम, अभयम शब्द का अर्थ होता है भय से मुक्ति. जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तो हमें चार प्रकार के प्रॉब्लम्स सताते रहते हैं, लोभ, और चार अलग अलग प्रकार के दोष है संसार में, जिसमें एक होता है मोह, लोभ, भय और एक चीज है, एक हाँ शोक। शोक, मोह, लोभ और भय, ये चार चीज जो होती है संसार में सबको परेशान करती है हमेशा, इसमें से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसमें एक भय भी आता है। सो भय का अर्थ क्या होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लग जाए, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं और मेरे शरीर को कोई नष्ट करेगा तो वो मेरी प्रकृति के विरुद्ध होता है। अर्थात मैं मर नहीं सकता, लेकिन मेरे शरीर को कोई मार रहा है तो वो मेरी प्रकृति से विरुद्ध है, तो इसलिए उसका भय लगता है। और ये भय को दूसरे शब्द में वो संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, भयम द्वितीय विनिवेश, भयम द्वितीय विनिवेश स्यात्। इसका अर्थ होता है कि मैं अपने शरीर के साथ जब जब पहचान करूंगा तब तक मुझे भय रहेगा, तब तक भय रहेगा, जब तक ये शरीर के साथ मेरी पहचान होगी तब तक। जब ये जानेंगे हम कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, तो फिर भय का कोई महत्व नहीं है। जैसे प्रॉपर एग्जांपल दिए कि विदेश में केवल एक ही, पश्चिम देशों में केवल एक ही वास्तविक फिलोसोफर हुआ था, या उसका नाम क्या है, नहीं सही, जिसने आत्मा तत्व के अनुसार फिलोसॉफी का प्रदर्शन किया है, सोक्रेट्स। तो उसको जब उसको मृत्यु का दंड दिया था, क्यों, तो उसको इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो सत्य बोल रहा था। और उसको जब मारने के लिए फांसी देने की बात हुई तो उसने कहा कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो, क्योंकि आत्मा तो मर ही नहीं सकता है, तुम मुझे फांसी पे लगाओगे तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला, तुम मुझे मार तो सकते नहीं, मारना है तो मार के देखो। सो न हन्य तो हन्य माने शरीर, ज्ञान क्या है कि ये शरीर नहीं हूं मैं, ये आत्मा हूं। प्रहलाद महाराज को, हिरण्यकश्यप ने बहुत अलग अलग प्रयास किए प्रहलाद को भयभीत करने के लिए। प्रहलाद का लिस्ट देखोगे तो उसको पढ़ने मात्र से भय लग जाएगा कि जलती हुई अग्नि में फेंक देना, ऊपर पर्वतों का ऊपर से चोटी से फेंक देना, सांप के भरे हुए एक जगह कुंड के अंदर फेंक देना, प्रहलाद को खाने में विष दे देना, तो ये तो सब सोचने मात्र से मनुष्य भयभीत हो सकता है। लेकिन प्रहलाद का भय का एक अंश भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि प्रहलाद जड़ बरत जैसा हो गया था, ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रहलाद वो अपने शरीर से अपने आप को देखता ही नहीं था। सन्यासी के लिए जैसे छठे अध्याय में आता है योगी, अष्टांग योग के विषय में, अष्टांग योगी जो होता है उसको अभय होना चाहिए, अगर वो भयभीत रहता तो योग नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति योग जो होता है उसमें भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा कृष्ण से शरण में रहता है, इसलिए उसको भय नहीं लगता किसी चीज का, बिल्कुल निर्भय रहता है। ध्रुव महाराज 5 साल की आयु में जंगल में चले गए, जंगल में दिन में तो आप लोग हम लोग जाते हैं, आप कार लेकर के हाईवे पर भी जाते हो तो दिन के अंदर तो आप चले जाते हो, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इसे रात को अंदर इस जंगल के अंदर जाना है कार लेकर के, पैदल तो नहीं कार लेकर के, जिसके अंदर दरवाजे बंद होता है, सब कुछ बंद होता है, फिर भी भय लगता है ना कार लेके जाना भी। आई रिमेम्बर मैं एक बार अमेरिका का कोई एक ये कैरोलिना का एक फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट के अंदर रात को 11 बजे हम लोग फॉरेस्ट के भीतर गए थे कार लेकर के, क्योंकि हमारा नाइट स्टे उधर था फॉरेस्ट के अंदर। सो कोई एक डिओटी का घर था बीच जंगल के अंदर और उनके घर पे मुझे रहने का था, तो वो रात को सो डेंस, इतना डेंस डार्क, उसके अंदर एनीबडी कैन फील फियर। But when the devotees, they are surrendered, like Dhruva Maharaj was surrendered, so they have no fear. Unko koi bhai nahi rehta. Kyon? Kyonki mama ivansho jivaloki. Wo samajhta hai ki main Bhagwan ka dash hu. Sarv sarnagat. Ise abhayam atma sansuddhi. Atma sansuddhi ka arth ta hai ya sattva sansuddhi. Sattva sansuddhi ka arth hota hai सत्व का अर्थ होता है अस्तित्व. असत नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः. सेकंड चैप्टर में था राइट. सत्व का अर्थ होता है अस्तित्व, और ये अस्तित्व जो है वो संशुद्धि के लिए है. संशुद्धि का अर्थ होता है प्योरिफिकेशन के लिए. अज्ञानता का जो रोग लगा हुआ है उससे प्योरिफिकेशन के लिए ये शरीर प्राप्त होता है. अभयम सत्व संशुद्धि, अस्तित्व को शुद्ध किया जाता है. शुद्ध करने का तरीका क्या है? शुद्ध करने का तरीका है ज्ञान की, ज्ञान को अर्जित करना. ये कम से कम इस इतने अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कम से कम इतना समझना. और इस प्रकार से जीवन जीना, ऐसा नहीं थियोरिटिकल कि हमने समझ लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं. लेकिन अधिकतर हमारा जो लाइफ में हम देखते हैं कि हम अज्ञानता के वासी कार्य करते हैं. सो इस तरह से इस अध्याय में वर्णाश्रम को लेकर के, जस्ट फॉर एग्जांपल, पहले तीन सन्यासी के लिए है, फिर चैरिटी, दमा और यज्ञ ये गृहस्थों के लिए है. थर्ड इज फॉर गृहस्थ. हमें भी आप इसको बाद में 26 को चेक कर सकते हो कि इसमें कौन सा किस में लागू होता है. जैसे चैरिटी दान देना चाहिए उनको 50% मिनिमम. फिर आत्मसंयम होना चाहिए गृहस्थों के लिए, क्योंकि उन लोग को एक लाइसेंस मिल जाता है, पुरुष और स्त्री एक साथ में रह सकते हैं. तो हो सकता है कि वो आत्मसंयम नहीं करेंगे तो पाप में कार्य में लग जाएंगे. फिर सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस का अर्थ होता है संकीर्तन यज्ञ या अग्निहोत्र करना, अलग अलग प्रकार के. वो उनके कंपल्सरी है, दे कैनॉट अवॉइड दैट. फिर ब्रह्मचारी के लिए विशेष करके स्वाध्याय है. स्वाध्याय का अर्थ होता है कि वो गुरुकुल में रहते हैं या आश्रम में रहते हैं. फिर भिक्षा मांगना जाते, भिक्षा मांगने का अर्थ ये नहीं होता है कि गुरु उनको पैसा कमाना चाहते या फिर भोजन का व्यवस्था करते. भिक्षा मांगने जाने का अर्थ ये ही होता है कि उसके अहंकार को नष्ट किया जाता है. आज के युग में ये अहंकार नष्ट करने का दूसरा तरीका आता है. आजकल हम मंदिर में जो ब्रह्मचारी नए जुड़ते हैं उनको हम मंदिर सफाई के कार्य में लगाते हैं, क्योंकि अब भिक्षा मांगने कोई जा नहीं सकता आज, तो मंदिर सफाई का कार्य करेगा. तो इस तरह से उनका अहंकार नष्ट हो जाएगा. तो ब्रह्मचारी को स्वाध्याय करके अपने आप को शुद्ध करना होता है. संशुद्धि इस तरह से उसकी हो सकती है. जैसे एक बार कमेंट किया था कि कलयुग में कैसा हो जाता है, कलयुग में सब कुछ उल्टा हो जाता है. गृहस्थ नहीं रहते, फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है. जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी पवित्र पवित्र जगह पे रहते हैं, पवित्र स्थान पे. लेकिन प्रैक्टिकली ब्रह्मचारी आश्रम में अधिकतर जगह पर मैस देखा जाता है, क्योंकि वो आलस्य के कारण उनका पूरा गंदा पड़ा होता है. उनके कमरे में कभी आप झांक कर देखोगे तो अधिकतर केसेस में गंदा पड़ा होता है, कुछ भी कहीं पर भी गिरा होता है. फिर गृहस्थ जो होते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ब्रह्मचारी, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव होता है, इसके कारण ऐसा देखा जाता है. बट सब ऐसे नहीं होते. जो कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं वो जनरली इस प्रकार के होते हैं. गृहस्थ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ को नियमों का पालन नहीं करते वो लोग. गृहस्थों के विषय में ऐसा माना गया है, वानप्रस्थ शहर में रहते, वो जंगल में नहीं जाते, वनों में नहीं जाते, फिर भी वो वानप्रस्थ होते हैं. और सन्यासी जो होते हैं वो सबसे धनवान होते हैं. गृहस्थ गरीब होते हैं, वानप्रस्थ वन में नहीं जाते, सन्यासी सबसे धनवान होते और वेल इज अ टीचर, इज अ गुड डिवोटी। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तीनों के चारों के चारों आश्रम कलयुग में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसका पूरा प्रतिबिंब आ जाता है। सो इस तरह से बहुत सारी है, जैसे तपस्या विशेष करके वानप्रस्थी के लिए है। इसके अतिरिक्त अधिकतर जो है वो सब सबके लिए है, लेकिन जैसे तेज, क्षमा, धृति, शौचम, शौचम ये सब किसके लिए है? क्षत्रियों के लिए। तेजस, क्षमा, तेज का अर्थ होता है वीरता, फिर क्षमा करना, ये सब क्षत्रियों के लिए है। शौचम ऐसे सबके लिए है, लेकिन शौचम का अर्थ होता है वैश्य, वैश्य को शुद्ध रहना चाहिए, अर्थात ब्लैक मार्केट नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रपद का तात्पर्य पढ़ेंगे इसके अंदर, तो ये 26 से 26 का प्रपद डिस्क्राइब किया है। जैसे वैश्य ब्लैक मनी यूज करते हैं, या फिर वो स्कैंडल करते हैं, या फिर गलत तरीके उपयोग करते हैं धन कमाने का, तो वो सब असूची में आता है। और 26वां है कि नाति मानिता, ये भी सबके लिए है, लेकिन शूद्र को विशेष करके ये लागू होता है, दूसरों को हमेशा आदर देना। सो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो गुण है इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, 26 गुणों का वर्णन है यहाँ पर। ओके, नाउ वी हैव अ स्मॉल क्वेश्चन दैट आप में से कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई देना चाहते हैं, कोई अपना एग्जाम्पल लाइफ में कि जिसमें आप बहुत भयभीत हुए हो, भयभीत हुए हो, या तो भयभीत हुए हो या फिर कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपको भय एक बार लगा लेकिन फिर आपने आपको अपने आपको संभाल लिया, तो ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने है कोई पास्ट एक दो हजार एक साल के अंदर या पांच साल के अंदर, ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि आपको भय लगा हो, एक्चुअली भय लगा हो, लेकिन फिर आप शास्त्र के आधार से या भगवान की भक्ति के आधार से आप अपने आप को संभाल लिया, या तो फिर उसके पहले का कोई एग्जाम्पल जब आपको कृष्ण भक्ति के विषय में ज्ञान इतना नहीं था, मतलब आप उस समय बहुत भयभीत हुए लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसा? यस,
1990 की, अच्छा 1990 की बात है, तो जो डोकलाम का जो आज का किस्सा हो रहा है, तो उस समय भी चाइना ने एक प्लान किया था कि हम इसके ऊपर अपना बिल्डअप करने का करते थे, तो वेस्ट बंगाल में ही हमारी तैनाती थी, तो 33 लोगों का एक ग्रुप टोटल सबका बना था, माय पैक थे सर, डॉक्टर की भूमिका में हम थे, और ये देख के आना था चाइना उस एरिया से कितना फोर्स ला सकता है। तो तब तो रियल एक्शन वाली हालत थी, तो पहले जो लोग जाते थे वो नीचे से ऐसे देखते थे और देख के और रिपोर्ट देके चले जाते थे, पार नहीं करते। तो हमारे पास स्कूल ऑफ एल्टीट्यूड वॉरफेयर गुलमर्ग के हमारे साथ इंस्ट्रक्टर होते थे, तो पहाड़ी का 1800-1800 एज के मुताबिक हम ही सबसे ज्यादा सीन होते हैं वहां पर, तो बाकी सब लंग लाग था, तो डॉक्टर नॉर्मली अक्सर ही 28 साल में, तो हम लोग चलते चले गए, देखते चले गए, तो ब्रिटिश लोगों ने वहां पे एक 5 पत्थर के ऊपर ऐसे पत्थर रखे
चाइनीज,
तो उससे पता करते थे कि हम चाइना के अंदर तो नहीं है।
ओके,
और चाइना के पास तो हम लोग दो ही बातें कहते थे, ऊपर या दिल्ली, दो ही जगह पहुंचे, तो बीच में कहीं नहीं रास्ता, उन्होंने पकड़ लिया जिंदा रखा, दिल्ली भेजेंगे वो तुम्हें, और नहीं तो ऊपर। तो क्या हम लोग तो पास है, नाम तो उसका नहीं लूंगा, उस पास के हम लोग बिल्कुल एज पे सीधे पहुंचे।
ओके,
अब उसके आगे कुछ नहीं, स्टील बिल्कुल मतलब हजारों फिट का आगे कुछ नहीं, हाँ जी, और शाम हो रही है, चार पांच बजने वाले हैं, अब सूर्यास्त होने वाला, रात को कहाँ निकलेंगे, न तो रहने की जगह पूछ रही है। और हमारा टारगेट पॉइंट था वो था कि उस टेरिटरी को पार करके स्टार्ट करके हमें आना था, गर्म पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स था धर्मपत्र लैंडिंग मार्ग, तो वहां पे जाके हम इंडिया में फिर आ गए। अब उस समय कई तो लोग ऐसे कहने लगे कि काम करो हमें मार दो, हम नहीं जाएंगे, ऐसी हालत। तो उस समय मेरी मतलब कुल देवी दुर्गा मानी जाती है, उनका एक स्त्रोत भी है, वो स्त्रोत बेसिकली धर्मा जी दृष्टि ने जिसको पढ़ा था जब विराटनगर में वो जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में दुर्गा का उन्होंने ध्यान किया, तो स्त्रोत मुझे रटा हुआ था, तो मैंने उन सबको वहां पर बिठाया, भय तो बहुत लग रहा था, तो मैंने सबको बोला कि मैं पांच मिनट बैठू, मतलब मैं दो दिन तक पढ़ता हूँ कुछ। फिर मैंने बताया सर प्रभु की ऐसी अचानक कृपा हुई कि हम लोगों ने भी लेफ्ट साइड की एज में देखा है, कोने से एक टूटा सा एक छोटा सा था गैप सा निकला, फिर रस्सी बांध के मैं सबसे पहले उतरा, फिर मेरे साथ में जो कम्युनिकेशन वाला वो उतरा, फिर धीरे धीरे करके उधर से निकले, जैसे ना जैसे कहते हैं वो सीता की खोज वाली हालत है, निकले हम लोग और नीचे नीचे सब 300-3300 निकल के, मतलब जो हमें लग रहा था कि पता नहीं कब निकल पाएंगे, हम सब निकल के पूरा झीले थी, वो झीले चाइना के, अब झील को कैसे पार करें, पार कर नहीं सकते अपनी तरफ तो पहाड़ है, तो फिर हम लोग पाली का नाम लेते झील पार करते करते भागते भागते करीब जाके जब गर्म पानी के चश्मे में पहुंचे तो बोला आप हिंदुस्तान में आए और रात को यहाँ रुको। तो उस समय जो जो वैकी तीन चार कारण थे, एक तो ये था कि हमारा मिशन फेल हो गया, इज्जत वाली बात, दूसरा ये था सबको परिवार और बाकी चीजें भी याद आती थी, और तीसरा पकड़े गए तो बेइज्जती बहुत बड़ी होती, और समय ऐसा समय हमारे यहाँ से निकला जा रहा। तो ऐसे मौके भी मतलब तो कभी कभी जो भगवान कृपा हो जाती है तो काफी बेहतर
बन जाता है।
ऐसे तो एक डेढ़ साल पहले की ही बात है, ज्यादा नहीं, बहुत खाए डेढ़ साल पहले। मेरा बड़ा भाई है, वो उस समय उसका कुछ मतलब पता नहीं उसको क्या हुआ, मेरे भाभी का फोन आया कि भाई आपके भैया को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप आ जाइए। तो मैं गया, अभी यहाँ जाता हूँ, ज्यादातर फीड बैक है ये सब लेके ही जाता हूँ, तो मैं बिल्कुल लेके वहां गया और फिर दिखा तो वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, वो मुझे मार डालेगा। तो तुरंत मुझे कुछ नहीं सुझा, तुरंत मैंने यही मेरे भाभी को बोला कि पहला भगवदगीता लाओ, तो भगवदगीता मैं उसके हाथ में देता, भगवदगीता उसके हाथ में देती, फिर मैंने उसको मेरी गोदी में भगवदगीता उसको हाथ में दे दी और बाद में मेरे बाजू में बिठा दिया। एक बार मैंने माला चालू किया, हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र चालू किया, दूसरा हाथ मैंने उस पर कर दिया। अभी इसका जैसे उसका जो पोजीशन था वो ऐसा था कि वो मुझे मार रहा है, कंटिन्यूट बोले जा रहा है, और मैंने महामंत्र चालू किया, हरे कृष्ण कंटिन्यूट चालू किया, और एक माला खत्म हुई, दूसरी माला खत्म हुई, तो जो जैसे बोलते हैं कि 100% फ्रीक्वेंसी पे वो डर रहा है, वो धीरे 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 परसेंटेज डाउन हो रहा, और धीरे से फिर इतना शांत हो गया मेरे को। तो उसके बाद बाद में मैंने बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया कि भाई उसको वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो चला गया।
और
हम लोग प्राग से बार्सिलोना जा रहे थे, बहुत छोटा प्लेन था, तो मतलब इतनी हवा थी कि जब वो प्लेन को उन लोगों ने चेन से बांधा था, इट वॉज मूविंग, इतना हम दिख रहा था, बट उन्होंने कुछ कैंसिल नहीं किया था, फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद ही मतलब इतना छोटा प्लेन था कि ऐसे टेक ऑफ हुआ फिर एकदम से ऐसे नीचे गया, तो प्लेन में लगभग ऑलमोस्ट 150-200 लोग सब चीखने लगे, गए अब तो। मेरी वाइफ भी चीख रही थी, मगर हम दोनों माला ही कर रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे भी डर लगा था, बट जैसे आपने बोला ना फिर तुरंत मुझे उस टाइम पे संभव ऐसे याद आया कि तो जरूरत नहीं है, ठीक है माला तो कर रहे हैं, चले गए माला करते करते जाएंगे तो अच्छा है, somehow मुझे फील हुआ, मगर विद इन सेकेंड देन एवरीथिंग वॉज इन कंट्रोल, बट दैट मोमेंट वॉज ऐसे लाइफ में कभी रोलर कोस्टर, मतलब एकदम से
सो लाइक दिस। इस तरह से हर एक के लाइफ में कभी न कभी भय आता है और उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भक्त होता है वो निर्भय होता है। जैसे एक बार एक भक्त ने मुझे कहा था एग्जाम्पल के रूप में, तो धीरे 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 हम अपने आप को इस तरह से कल्टीवेट करते हैं। एक भक्त ने कहा था कि हमारे घर में कुछ गोश्त का इफेक्ट है, तो बार बार मुझे बताते थे कि ये है वो है, सुनता था उनकी बात। एक बार फिर मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा दिखाओ कहाँ पर है, मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, दिखाओ कहाँ पर है। तो मैं उनके सारे कमरे में जितना कमरे है जैसा जगह घूम लिया, लेकिन उस समय फिर हम वो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप भगवान के ऊपर शरणागत रहते हो, आपको कृष्ण को आप हमेशा अपने मन में रखते हो चिंतन में, तो आप किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं हो सकते। किसी भी अवस्था में चाहे कुछ भी हो जाए आपको कुछ भय नहीं लगेगा। लेकिन ये भक्त ये विचार जो है ये इसको सीखना चाहिए, इसको अनुभव करना चाहिए। जैसे हमारे कई बार भक्त लोग ये तो बड़ी बात बता रहे हैं, या कोई ऐसी स्थान जैसे आप बता रहे थे, बिग बिग थिंग्स, जैसे आप प्रभु जी का एग्जाम्पल था आपका, वेरी बिग थिंग कि भाई जैसे खत्म होने ही वाला है अचानक बच गए। लेकिन लाइफ में बहुत सारी जगह ऐसे भय आ सकता है, दूसरी का और भी अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण और गुरु को पकड़ कर रखोगे तो आपको कहीं पर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वैष्णव अगर आपके साथ है तो आपको भय की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो भय क्यों अनुभव होगा, फिर भय होगा ही नहीं अनुभव उसको। जब बच्चा अकेला होता है तो छोटा मोटा कुत्ता आसपास में आता है तो भयभीत हो जाता है, लेकिन बच्चे ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ के रखा है तो फिर वो आसपास में कुत्ता आया बिल्ली आया कुछ भी आएगा उसको कुछ भय नहीं लगता है, है ना। सो इस तरह से जब तक भगवान के साथ में रहता है भक्त या गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है तो उसको भय का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और भय से मुक्त होने का और कोई तरीका आप बताना चाहते हो?
यही एक तरीका है जो आपने बताया, दूसरा तरीका
नहीं पता क्या। करंट चालू होना चाहिए, करंट चालू होता पाँव
पकड़ो।
प्रभुपाद यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल, जैसे उद्देश्य इस एग्जांपल का ये कि वो अपने पिताजी का उपस्थिति अनुभव कर रहा है। यस, तो श्रद्धा होनी चाहिए कि अवश्य रक्षे कृष्ण, कृष्ण मेरी हमेशा रक्षा करेंगे चाहे किसी भी परिस्थिति में। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये सीखा अभयम सत्व संशुद्धि, तो इसका अर्थ क्या होता है कि इन गुणों को हमें विकसित करना चाहिए, इन गुणों को हमें विकसित करना चाहिए। ये कोर्स तो क्या है कि आप 2-4-6 महीना और पढ़ेंगे फिर कोर्स तो खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन बाद में लाइफ टाइम आपको इसका हमें मिलना चाहिए परिणाम, तभी हम सीखे ऐसा हम मान सकते हैं ना, कि हमें सब प्रकार से अभय प्राप्त होना चाहिए। That is the, yes.
प्रभुपाद का फेमस है एग्जाम्पल, जो मायापुर में सांप मिला था मन टेम्पल में, तो श्रुति कीर्ति प्रभु अरुण को बहुत डर गए थे, तो प्रभुपाद वहाँ पे हंस रहे थे कि एक सांप को पकड़ने के लिए इतने सारे तो मतलब वो बहुत फेमस लीला है।
yes.
एक मेरे मन में एक मेरे सीनियर ने ये विचार ऐसे लगाया था कि अगर हम भय का मतलब अंतिम परिणाम समझ लें तो फिर भय काफी अपने आप ही कम हो सकता है।
यस,
जैसे वो यही कहा करता था, तो क्या जैसे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं कहता है ये टूट गया तो क्या हुआ, उसको काट के ऐसे निकाल देंगे तो क्या हुआ, उसके बाद आँच चली गई तो क्या हुआ, उसका अल्टीमेट ये था।
yes.
कि वो इस तरह से बोलता था, हालांकि वो 100% सही नहीं था, बट उसका जो डायरेक्शन थी वो ठीक थी। जैसे मान लिया कि तो एक उनकी एक उदाहरण आते हैं ना, कोई तीर्थ यात्रा करने जा रहा था, कोई शिष्य था इनका, भगवान गौतम बुद्ध का, तो बोला तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैसा छीन लेंगे, तो बोला हमारा वजन घट जाएगा, कम हो जाएगा, बोला तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे तो क्या हुआ, बड़े रहेंगे, गर्दन काट देंगे तो और अच्छा है, जल्दी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से अगर विचार किया जाए ना, तो फिर भय व्यवहारिक रूप से भी कम हो जाएगा। श्री कृष्ण का चरण पकड़ लिया फिर तो झंझट ही खत्म। लेकिन अगर नहीं हो तो भी अंतिम में क्या, अब ऐसे मान लिया कहीं पैसे लगाए डूब ही लगाए, डूब गए तो डूब गए, अगर तो क्या, तो अगर तो क्या वाली भावना लगा था तो काफी चीजें नुकसान हो गया।
यस हो सकता है, लेकिन ये अच्छा मत, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन,
वो बेस्ट है,
कि वो आध्यात्मिक चेतना के साथ भय द्वितीय भिनिवेश तस्यात भय। यस
कोई भी परिस्थिति में, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी ने वो जो अपने चरणों में लिखा था कि जब जुहू का मंदिर में वो जो बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, यहाँ तक भक्तों को भी चाकू दिखाया जा रहा था, बहुत सारे तरीके से वो लोग परेशान कर रहे थे, और लास्ट में वो जो जमीन का मालिक था उसने बहुत मतलब बहुत भला बुरा कहा था प्रभुपाद जी को, तो उस नाइट को प्रभुपाद जी ने भगवान को प्रार्थना किया था कि भगवान ये मंदिर में तुम्हारे लिए बना हुआ हो, मेरा उसमें कोई नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम आके यहाँ विराजमान हो और कुछ नहीं। और उसी नाइट को उसमें सुबह में पता चला कि उसको हार्ट फेल हो गया। मतलब यही है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर हम भगवान को सिर्फ प्रार्थना कर देते हैं, और वो भी सही, मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, पर ऐसे अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस प्रॉब्लम में से हमको अवश्य निकाल।
तो प्रभुपाद जैसे उस लेक्चर में बताया कि भय का मूल कारण आत्मा और शरीर का अज्ञान, जो मूल कारण वो है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, ये हमारे भय का मूल कारण है। या अपने वास्तविक स्वरूप को
भूल जाना
है, पहचाना नहीं, ये भय का कारण। जैसे कोई बच्चा अनाथ हो जाता है और उसको उसके माता पिता है लेकिन उसको पता नहीं कि कौन है, तो वो भयभीत हो जाता है। लेकिन जैसे उसको पता पड़ जाता है कि मेरे माता पिता तो राजा है, वो तो किंग है, तो फिर उसका भय चला जाता है ऑटोमेटिकली, देन इज वेरी हैप्पी। सो इस तरह से पहले तीन श्लोकों में देवी गुणों का वर्णन है, और अब कृष्ण 6 गुण बताएंगे जो आसुरी गुण है, उसके बाद फिर आसुरी प्रकृति बताएंगे। तो आसुरी गुणों को पढ़िए, टेक्स्ट नंबर 4।
हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं।
हाँ, दंभ, दंभ का अर्थ है मूर्खता या प्रिटेंशन, या जो है वो दिखाना नहीं, या जो है नहीं है वो दिखाना, शो करना, दंभ, प्राइड, समटाइम्स कॉल्ड प्राइड आल्सो, दंभ इज आल्सो डंब, यू नो, सो इजी टू रिमेम्बर, दंभ। सो दंभ, दर्प, और प्रॉपर तात्पर्य में कहते हैं इसके विषय में दैट संपदम आसुरिम, in this verse the royal road to hell is described. Somebody can read this particular paragraph. Is shlok mein
first line,
yeah,
is shlok mein narak ke rajmarg ka varnan hai. Aasuri swabhav wale log dharma tatha atmavidya ki pragati ka aadambar rachna chahte hain, bhale hi ve unke siddhanton ka palan na karte ho, ve sadaiv kisi shiksha ya prachur sampatti ka adhikari hone ka darp karte hain. वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी के प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं।
प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं एक्चुअली ये आसुरी गुण ऐसा नहीं होता है कि पृथ्वी के नीचे एक पाताल लोक है और पाताल में रहने वाले सब असुर होते हैं। तो हम जो टीवी चैनल्स में देखते हैं कि सिंह होता है या यू नो बड़ी बड़ी मुस्टैक होती है और यू नो बड़े बड़े मोटे बड़े बड़े दांत होते हैं, उसको असुर बोलते नहीं। असुर का अर्थ होता है ये जितने गुण है, जितने भी गुण है ये सारे गुण उस व्यक्ति में होते हैं, तो वो असुरी बन जाता है। चाहे वो कलयुग में कैसा होता है कि मनुष्य के अंदर दैवी गुण और असुरी गुण दोनों साथ में रहते हैं। जैसे आप 26 गुण जो है उसमें से आपको एक दो मिल जाएगा किसी के अंदर, लेकिन फिर आपको इसमें से भी 6 में से भी एक दो मिल जाएगा, 6 में से 6 मिल जाएगा। तो ये अधिकतर देखा है, प्रॉपर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि वो यू नो बहुत कटु वचन बोलते हैं, बड़े क्रोध से बोलते हैं। कई बार होता है कि कई बार भक्तों को भी देखा जाता है, भक्तों के जीवन में अगर कई बार या तो फॉलोअर या तो लीडरशिप का सेवा कर रहे हैं और उनकी बात किसी चीज से वो प्रसन्न नहीं हुए, आपको उनकी बात पसंद है, तो अत्यंत कटु वचन और बहुत ही हार्श यू नो पूरा आपका हृदय भग्न कर दे ऐसे। और इतना नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो इसका जो आधार होता है वो ये होता है कि वो जानते नहीं प्रभात का, दे डू नॉट नो व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, वो जानते नहीं कि करने के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो सब कुछ विम्सिकली करते हैं और अपनी इच्छा के अचानक से बस मन में प्रकट हुआ कोई विचार और फिर वो विचार को वो शुरू कर देते हैं। उनको किसी ऑथोरिटी की आवश्यकता नहीं या फिर वो किसी ऑथोरिटी को मानते नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे भक्तों में भी हमने देखा है ऐसे कि उनको कोई अथॉरिटी नहीं पसंद आती, कोई भी अथॉरिटी हो चाहे उनके ऊपर कोई होना नहीं चाहिए, ऐसे हमने देखा कई बार भक्तों को। क्या करते हैं कि देखते हुए किसी की अथॉरिटी, सब लोग बोलते हैं अथॉरिटी, तो क्या है 5-5-5 में 10% आपकी अथॉरिटी, फिर 20% इसकी अथॉरिटी, 10% इसकी अथॉरिटी, फिर क्या मल्टीपल अथॉरिटी हुई, इसका अर्थ क्या हुआ, नो अथॉरिटी। जब बहुत सारी अथॉरिटी हो जाती है इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं, इसका कोई अथॉरिटी नहीं है, अर्थात आपके पास जाएगा तो कहेगा कि उसने कहा ऐसा, अगर उसने अपनी इच्छा से किया, दूसरे के पास जाएगा तो कहा कि उसने ऐसा किया, तो कोई उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि ही डजंट वॉन्ट एनी अथॉरिटी। बट दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज नॉट फेवरेबल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर किसी अधिकारी को, किसी व्यक्ति को हम शरणागत नहीं होते, वरिष्ठ भक्त को या आध्यात्मिक गुरु को या भगवान को, तो परिणाम क्या आता है कि हम विम्सिकली कार्य करना शुरू कर देते, दिस इज बिकॉज ऑफ डिमोनिक क्वालिटी, ये आसुरी गुणों के कारण ऐसा होता है। आसुरी गुण प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि वो माता के गर्भ में जो बाहर आता है और फिर ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता, कई बार माता के गर्भ से उसके होते हैं इस प्रकार के गुण और फिर जब बाहर आता है गर्भ से तो वो ये गुण को विकास करता है, उसका विकसित होता है। सो ये असुरी क्वालिटीज को प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अलग अलग जगह पर ये टॉक वेरी नाइस टू वन ऑफ द लेक्चर्स प्रभुपाद से इज दैट जैसे हर एक वस्तु का साइंस लैब में क्या होता है कि हर एक केमिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका कलर, उसका शेप, फिर उसका स्वाद, उसका रिएक्शन, ये सब कुछ एक साथ उसको स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आप समझ सकते हो। सो इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक को धर्म कहते हैं। फिर प्रॉपर एग्जांपल दिया स्नेक, सांप का धर्म क्या है, चाहे कोई कुछ भी ना बोले, कोई उसको परेशान भी ना करे, कोई उसको सताए भी नहीं, फिर भी काटता है, ये सांप का काम है। प्रॉपर सेड दिस थिंग कि चाणक्य पंडित सेड सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूर तरक खलह, सर्प भी क्रूर होता है और खल अर्थात मनुष्य वो भी क्रूर हो सकता है, लेकिन जब मनुष्य क्रूर होता है तो सर्प से ज्यादा क्रूर हो जाता है, क्योंकि सर्प को तो वश में लाया जा सकता है लेकिन खल केन अनिवार्य थे, खल केन अनिवार्य थे। तो जो मनुष्य होकर के सांप जैसा हो जाता है ईर्ष्यालु,
ईर्ष्यालु
खल ईर्ष्या के लिए, तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। यस
जी, सांप जो है ना जब तक उसको तंग न करो नहीं काटता।
हाँ।
लेकिन दुष्ट जो है ना खल जो है वो बिना तंग किए भी काटता है।
यस,
तो इसीलिए वो सांप से थोड़ी ज्यादा क्वालिटी अच्छी
है। यस, चार कमंडल एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि उसको कुछ मंत्र से या कुछ कुछ उसको सांप को कोई म्यूजिक बजा करके उसको वश में किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को नहीं किया जा सकता। हाँ, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मनुष्य को कंट्रोल करना, मनुष्य को कंट्रोल नहीं हो सकता है। सो इसी तरह से देवी और आसुरी इन लोगों को गुणों के आधार से समझा जा सकता है। अगर हम ये आसुरिक जो गुण है इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो हम अधिक अधिक बंधन में फंसते हैं। प्रभुपाद सेड दैट ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर डेवलपिंग डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक, डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक आर ऑलरेडी देयर। वो तो है ही, उसको विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कोई सोचे कि अगर छह गुणों को मैं कैसे विकसित करूं, तो प्रभुपाद सेड इज ऑलरेडी देयर। विकसित करने का कार्य क्या है, डिवाइन क्वालिटीज, जो दैविक गुण है उसको विकसित करने का आवश्यक। जैसे प्रभा एग्जाम्पल लिया दम्भ, तो दम्भ का अर्थ होता है अभिमान, एक अर्थ होता है अभिमान। अभिमान का अर्थ क्या होता है, आई एम दिस डॉग, मैं एक कुत्ता हूं। तो एक कुत्ते में भी दम्भ होता है, बिल्ली में भी दम्भ होता है, बड़ा कुत्ता हूं मैं, छोटा कुत्ता हूं वो भी दम्भ होता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के दम्भ होता है। कोई कोई सोचता है कि मैं गधा हूं, तो कोई भी वैष्णव में क्या देखा जाता है, कोई सोचता है कि मैं विनम्र हूं, ये उसका दम्भ हो जाता है। वो उसका कोई किसी का अहंकार कैसा, मैं बहुत पापी हूं, इसका अहंकार पापी होने का अहंकार होता है। ये अजीब लक्षण होता है। जैसे अधिकतर केस में क्या देखा जाता है कि बक लोग मानते हैं कि मैं बहुत बुद्धिशाली हूँ, मुझे शास्त्र पूरा पता है, मैं कभी गलती नहीं कर सकता, मैं गुरु के आदेश को पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ, ये सारी चीजों का अभिमान अक्सर देखा जाता है भक्तों के बीच में। लेकिन कई बार ऐसे भी अभिमान होते हैं, मैं बहुत पापी हूँ। एक मुला था एक भक्त, मुझे मैं बहुत पापी हूँ, बहुत चार पांच बार बोल दिया। तो फिर मैंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो, कि आपके पाप की तुलना इतनी ज्यादा है कि कृष्ण के भक्ति भी आपका काम नहीं करेगी। मीन्स आप कहना क्या चाहते हो, कि भक्ति कमजोर है आपके सामने। तो बोले नहीं नहीं, तो मैं इसका अर्थ यही हो रहा है, आप बहुत पापी हो, बहुत पापी हो, इसका क्या, व्हाट डू मीन टू से, यू नो। एक बार वो एक महाराज को एग्जाम्पल के रूप में कई बार बताता हूँ मैं, कि एक बार एक शिष्य ने एक गुरु जी को कहा मैं पापी हूँ। वो गुरु जी कुछ काम कर रहे थे, बैठा था शिष्य, मैं बहुत पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो एक पूरा पैराग्राफ भर के बोल दिया उसने। बाद में बोला, यस आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम पापी हो, इससे तो क्या मीन्स। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो शिष्य, कि गुरु बोले कि नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। तुम पापी नहीं हो, तुम इतना अच्छा सेवा कर रहे हो, तुम वैष्णव हो, दीक्षा लिए हो, यू नो, इतना तो सेवा करो। तो गुरु ने सामने उल्टा आंसर दिया, गुरु ने कहा कि हाँ मुझे सब पता है कि तुम कितने गिरे हो, कितने पापी हो, कितने पतित हो, बताने की आवश्यकता नहीं। सो इसका भी अहंकार हो सकता है, दैट्स कॉल्ड दम्भ। सो किस बात का दम्भ होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु तो मना कर रहे, सुनी चेतन। वांट टू से समथिंग? क्या
दो मिनट टाइम हो तो सुना दो कथा हो
फर्स्ट।
तो वे कह रहे थे कि धर्म ऐसा होता है कि जो आपके अंदर है नहीं, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने तरीके आनंद हो। धर्म जो था एक बार तो बढ़िया उसने कमंडल लिया, सफेद खूब दाढ़ी कपड़े पहने और ब्रह्म लोग में पहुंच गया और ब्रह्मा जी के सामने पहुंचा तो उसकी चमक धमक देख के सारे ऋषि को खड़े हो गए उसके। तो ब्रह्मा जी ने बोला विराजो। तो ब्रह्मा जी से बोलता है मैं कहाँ विराजू, कोई पवित्र स्थान हो जहाँ बैठो ब्रह्म लोग। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मेरी गोद में बैठ जाओ। तो वो जब उनकी गोद में बैठने गया तो उसने जल लेके छिड़का पड़ पवित्र किया फिर ब्रह्मा जी की गोद में बैठा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो बताओ आप कौन हो, जो मैं आप ही का पुत्र दम हूँ। तो इस लेवल तक कोई आदमी दम भी खींच सकता है अपने आप।
यस दम्ब, यस दैट इज देयर। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर दम्ब को दूसरे अर्थ के रूप में प्रभुपाद यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जैसे अभिमान, अभिमान के रूप में इसको अर्थ किया। और जैसे जो चीज नहीं है उसको शो ऑफ करना, आडंबर, और विशेष करके अभिमान के रूप में। कई बार बोलते हैं ना कि चाहे वो कितना भी गिरा हुआ होगा लेकिन अपने आप को वो सबसे अच्छा ही बताएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखने वाले कृष्णदास कविदास गोस्वामी अपने विषय में ऐसा कहते हैं कि पुरुषे का कीट हो तो मोहित लगिष्ट जगाए मदाई से मोहित पापिष्ट। वो कहते हैं कि जो पुरुषे का कीट अर्थात जो विष्टा होती है उसका जो कीड़ा होता है उससे भी मैं नीच हूं। और ये कोई लिखने वाली बात नहीं है, ये बताने वाली बात नहीं है, ये अनुभव करने वाली बात थी। वो ऐसा अनुभव करते थे कि पुरुषे रकीट भाई तो मोहित लघिष्ट और जगाई मदाई से मोहित पापिष्ट, और जगाई और मदाई से भी मैं अधिक पापी हूं। और एक्चुअली वो ऐसा फील करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में उनका नाम भी नहीं आएगा, देखना आप पूरी चैतन्य चरितामृत में उनका नाम आता ही नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का शायद गोपाल भट्ट गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी टू, उनका नाम आता ही नहीं कहीं पर। क्योंकि जब कृष्णदास कविदास लिख रहे थे तो उन्होंने उनको सहायता की थी लेकिन शर्त रखी थी कि शर्त ये होगी कि पूरी चैतन्य चरितामृत में कहीं पर भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नो वेयर मेंशन नहीं करना हमारा नाम कहीं पर भी, ऐसी शर्त। वो इतने विनम्र थे, दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी। तो अदम्बित्वम जस्ट अपोजिट, हमारा समस्या क्या है कि हम हमेशा सबसे महान बनना चाहते हैं लेकिन हमारा इसका जस्ट अपोजिट है। क्या है, मैं कृष्ण का तुच्छ दास हूं और कृष्ण का दास बनने का अगर आपको अभियान होता है तो वो ठीक है कि मैं दास हूं, आई एम कृष्ण सर्वेंट, वो अभिमान ठीक है, उसको एक्सेप्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यू नो इफ आई एम अ कैट, आई एम अ डॉग, आई एम अ टाइगर, यू नो सो कॉल्ड बिग मैन, दिस इज ऑल बॉन्डेज, असुरी, ये सब असुरी है। सो निबंध है, निबंध का अर्थ होता है इससे बंधन लगता है। फ्रीडम इज ऑलवेज देयर। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम है कि आप असुरी बनना चाहते हो या दैवी बनना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है, दैट इज द फ्रीडम। कृष्ण आपको दोनों प्रकार से सहायता करेंगे। अगर आप हिरण्यकशिपु जैसा बनना चाहते हो तो आपको हिरण्यकशिपु बनने का भी अवसर देंगे, आपको सब सुविधा देंगे हिरण्यकशिपु बनने के लिए। अगर आप प्रहलाद जैसा बनना चाहते हो तो आप प्रहलाद की तरह बनने के लिए भी सुविधा दे सकते हो। अभी ये हम पर निर्भर करता है कि हमें दैवी गुण प्राप्त करना है या हमें आसुरी गुण प्राप्त करना है। ये मेरी अपनी निजी चुनाव, निजी चॉइस होनी चाहिए। ये भगवान सबके प्रति समान है लेकिन अगर कोई भक्त देवी गुण को प्राप्त करना चाहता है तो कृष्णा सहायता करने के लिए बड़े उत्साही होते हैं, वेरी हैप्पी। यस,
ये जो देवताओं जो बोलते हैं नाम से ही है कि वो विष्णु भक्त जो होते हैं, जो देव होते हैं, और आसुरी पर तो जो देवता है जो इंद्र चंद्र वरुण आदि, उनमें ये देवी गुण तो मतलब होते हैं, तो आसुरी गुण भी कभी कभी उसमें दिखाई देते हैं, कितना मिश्रण होता है, कैसा होता है?
देवताओं में कभी कभी इस प्रकार की भावना आती है, लेकिन उनका एक क्वालिटी जो होता है वो उनके आसुरी गुणों को ढक देता है। वो क्वालिटी ये होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में विष्णु की शरण छोड़ देनी है। एक दो घंटे के लिए भूल जाते हैं, लेकिन वापस ठीक हो जाते हैं, विष्णु की शरण छोड़ देना। आसुरी का मुख्य फर्क ये होता है कि वो चाहे किसी भी दुर्गति में हो जाते हो, फिर भी वो विष्णु की शरण नहीं लेते, वो भगवान की शरणागत नहीं लेते। ये आसुरी, एक्चुअली आसुरी का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल नीचे के लोक वाले लोग, आसुरी अधिकतर पृथ्वी पे ही देखे जाते हैं। आज कलयुग में अधिकतर लोग आसुरी प्रकृति वाले लोग, आसुरी गुणों वाले लोग हैं। तो भगवान उनकी सहायता करते हैं, लेकिन भक्तों की सहायता पहले होती है, और उन लोगों को भक्तों का सप्लाई फर्स्ट प्रायोरिटी, भक्तों की आवश्यकता पहले पूरी की जाती है। लेकिन भक्त जो होता है उसको कर्म पर अध्ययन रहना पड़ता है। प्रभुपाद कहते हैं कि नॉन डिवोटीज जो होते हैं दे आर डूइंग कर्मा एंड डिवोटीज दे आर डूइंग भक्ति, सो देयरफॉर भक्ति इज फर्स्ट एड्रेस्ड। भक्ति को सबसे पहले भगवान ध्यान करते हैं, अर्थात ये भजंती माम प्रत्येतेषु ते मयी। भगवद्गीता में जगह कहते हैं कि भक्तों की आवश्यकता भगवान सबसे पहले पूरी करते हैं। अगर आप कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत हो, तो आपकी आवश्यकता पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है। अगर आप पूर्ण रूप से शरणागत हो तो भगवान आपकी हृदय को देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये चाहता क्या है, ये किस तरह से सेवा करना चाहते हैं। भगवान ये सब देखते हैं, और फिर उस चीज को देख करके उस हिसाब से आपकी आवश्यकता पूरी कर देते हैं। भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति की ये आवश्यकता है, इस व्यक्ति को अभी मेरे शरणागत है लेकिन वो मुझ पर निर्भर है, अगर मैं इसको हेल्प नहीं करूंगा तो वो हेल्प लेगा भी नहीं, वो किसी और के पास जाएगा भी नहीं मांगने के लिए, तो देवी देवताओं का पास भी नहीं जाएगा, वो सहन कर लेगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए भगवान फिर विवश हो जाते उसको सहायता करने के लिए। तो इस प्रकार से भक्त जो होता है उसको पहले सबसे पहले भगवान देखते हैं। एंड फर्दर प्रभात इसी लेक्चर में प्रभात आगे कहते हैं कि ये डिमोनिक विचारधाराओं को सबको छोड़ दो और मेरी शरणागत हो जाओ, ऐसी भगवान की इच्छा है। दिस इज कृष्ण डिजायर। नाउ वी हैड अर्लियर, हमने जो बात किया वो क्या है, हमारी चॉइस। अब प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की चॉइस क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि छोड़ो इस असुरी गुणों को और मेरे शरणागत हो जाओ, दैट इज कृष्णस चॉइस। इफ यू डोंट एग्री विथ कृष्णस डिजायर और आपको अपनी डिजायर फॉलो करना है, तो फिर कृष्णा उसकी सहायता भी कर देंगे आपको। सो भगवान की इच्छा को फॉलो करने का अर्थ होता है तपस्या। हमें हमारी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए, उसको त्याग कहते हैं। हमें केवल कृष्ण की इच्छा को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अर्जुन की इच्छा थी युद्ध नहीं करना, और कृष्ण की इच्छा जस्ट अपोजिट थी, युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन ने अंत में क्या कहा, करिष्ये वचनंतरम, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं, अन्यथा मैं और कुछ नहीं करूंगा। कृष्ण वॉन्ट्स दिस, आई मस्ट डू इट, आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर मी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर कृष्ण, दैट इज वृंदावन। प्रपस इज दिस इज वृंदावन, ये वृंदावन का भाव है कि मैं अपनी खुशी के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, उसका एक लक्ष्य रहेगा कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए। The cowherd boys, the cows, the caves, the trees, the flowers, the waters, The gopis, the elderly inhabitants, Mother Yashoda, Nanda are all engaged in fulfilling Krishna's desire. Sab kai, pachhade, nadi, pani, pashu, pakshi, ped, paudhe, phool, gopiyan, mata, Yashoda, Nanda Maharaj, ye sab ka ek hi lakshya, aasman ka badal ka bhi, ek hi lakshya, kis tarah se Krishna ko prasanna kiya jaye. जैसे शास्त्र में बना है कि जब वृंदावन में कभी धूप आती है तो बादल आकाश में बैठा बैठा सोचता है कि कृष्ण को धूप आ रही है, तो वो तुरंत दौड़कर चला जाता है कृष्ण के ऊपर ताकि वो कृष्ण को छाया मिल जाए। और आपका जगह बादल तो निर्जीव वस्तु है, बादल में थोड़ी जान होती है, लेकिन आध्यात्मिक विश्व में बादल भी बोल सकता है, बादल में भी जान होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो दिव्य जगत है, वहां सब कुछ चिन्मय है। हमारी तरह यहाँ पृथ्वी जैसा जड़ पदार्थ नहीं उधर कहीं पर भी। एवरीथिंग इज लिविंग, सब कुछ चिन्मय है, चेतनामय, जीवंत है। सो दैट इज वृंदावन। हम इस पृथ्वी को, इस संसार को वृंदावन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम हर एक वस्तु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करें और कोई उद्देश्य से ना करें तो फिर आपको वृंदावन में रहो या आप अहमदाबाद में रहो, आप दोनों के लिए एक समान हो जाएगा। वैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि इस मंदिर में हमारा कार्य है कृष्ण को संतोष करना, लेकिन घर में हमारा कार्य क्या होता है? लोगों का अपने निजी इंद्रियों को संतोष करना। मंदिर में हम सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और उसको प्रेम बोलते हैं, और घर में हम क्या करते हैं? हमारा निजी प्रशंसा, निजी प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए उसको काम बोलते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति, मेरी अपनी इंद्रिय तृप्ति, मेरी आंखों को सब गलत चीजें देखनी है, मेरे मुंह को सब गलत चीजें बोलनी है, गलत चीजें खानी है, तो ये मेरी आत्म इंद्रिय है उसको मैं संतुष्ट कर रहा हूं, इसलिए इसको काम बोला गया है, काम। और मेरा अगर उद्देश्य केवल एक ही है कि मैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं और उसके लिए मुझे मेरी इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, तो परिणाम क्या आएगा? तब वो प्रेम कहलाएगा। गोपियों की तरह, गोपियां कृष्ण को देखना चाहती थी, कृष्ण की सुंदरता से वो मोहित थी। जिस तरह से जस्ट लाइक अ यंग गर्ल बिकम्स कैप्टिवेटेड बाय सीइंग अ वेरी नाइस बॉय, और अ बॉय इज कैप्टिवेटेड बाय सीइंग अ ब्यूटी ऑफ अ गर्ल, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो इंद्र तृप्ति है। पुरुष स्त्री से आकर्षित, स्त्री पुरुष से आकर्षित, तो वो प्रेम नहीं, वो काम है। बट द गोपी इज गोइंग टू कृष्णा सुपरफिशियली एज द सेम थिंग। फिर भी गोपियां जाती थी कृष्ण के पास, बिल्कुल उसे गोपियां भी जवान लड़कियां हैं और कृष्णा एक बहुत हैंडसम पुरुष है या लड़का है, उनका दिखने में एक समान है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर गोपियां कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के संतोष के लिए जाती, अपनी काम वासना पूरी करने के लिए नहीं जाती है। और मटेरियल वर्ल्ड में सीधा उल्टा प्रतिबिंब देखा जाता है। सो देयर इज, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सेड रम्या का चित उपासना रजवधु वर्गेण या कल्पिता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होकर के ये कह रहे हैं कि गोपियों की उपासना करने की जो विधि है, जो तरीका है, जो पद्धति है, वो सबसे उत्तम है। रजवधु वर्गेण या कल्पिता रम्या का चित उपासना। सो अलग अलग प्रकार की उपासना हो सकती है, बट दैट इज द बेस्ट। गोपी भाव रसामृता दिलहरी। हमारे जो छह गोस्वामी थे, वो छह गोस्वामी निरंतर गोपी की चेतना में रहते थे, गोपी भाव की चेतना में, लेकिन उनका उद्देश्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये चीज तो बहुत पहले त्याग कर दी थी, ये सारी चीज तो उन्होंने पहले ही त्याग कर दी थी। उन्होंने अशेष मंडलपति, उनके पास अबजो रुपए थे, सब कुछ त्याग कर दिया था, स्वर्ग से सुंदर पत्नी थी त्याग कर दिया था, सब कुछ त्याग कर दिया था उन्होंने, और सन्यास लिए हुए थे, अर्थात उन्होंने निजी सुख की जो भी तरीके थे अपनी इंद्रिय तृप्ति के, सब उन्होंने त्याग कर दिए, तब जाके ये संभव हो पाया। क्या? गोपी भाव रसामृता, अर्थात राधा कृष्ण की भक्ति को या गोपियों की भक्ति को समझने के लिए मनुष्य को निजी इच्छाओं का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, उसको तिलांजलि देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा देवी गुण और आस्तिक गुण का ये सबसे बड़ा जो चुनाव है, उसका ये मूल आधार यही पर है कि कि हम हमारी सिलेक्शन क्या करते हैं, हमारा सिलेक्शन कहां पर है, हमारा माया के प्रति सिलेक्शन है या कृष्ण के प्रति सिलेक्शन है। और कृष्ण का सिलेक्शन क्या है, सरेंडर टू मी। कृष्ण का सिलेक्शन क्या है, माम शरणम रज, मेरे शरणागत हो जाओ। सो दिस इज डिवाइन। सो इस तरह से दिस लेक्चर वॉज गिवन इन हवाई। प्रोपर नाइस लेक्चर, प्रोपर टॉक अबाउट ऑल सच पॉइंट। सो हमें इसको आध्यात्मिक जीवन को अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए, दैट वी कैन यू नो बी सक्सेसफुल। सो ओके, टेक्स्ट नंबर 5। यस, कैन हैव सम वाटर।
देखिए, गुरु मोक्ष के लिए अनुकूल है।
हाँ,
और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
यस, अर्जुन को शायद चिंता हो गई थी कि शेर को बता दिया आसुरी, मैं यहाँ पर हत्या करने आया हूँ सबकी, कृष्ण इंडायरेक्टली मुझे तो नहीं बता रहे कि मैं आसुरी गुण वाला हूँ। तो यू नो वो पर्सनल, हाँ, वो पर्सनली ले रहा था कि मैं कृष्ण इज इट दैट मैं आसुरी गुण में, ऐसे मन में सोच रहा था। कृष्ण इज सो स्मार्ट, कृष्ण जनरली आपका हृदय में क्या चल रहा है वो तुरंत चेक कर लेते हैं। 1% मन में शंका हुई कि अर्जुन सोच रहा है कि मैं तो आसुरी गुण में नहीं हूं। कृष्ण तुरंत ही बोल दिया, नहीं 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 अर्जुन, तुम आसुरी गुण में नहीं हो, तुम तो दैवी गुण से पैदा हुए, तुम तो दैवी गुण वाले हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे विषय में नहीं बता रहे। लेकिन दैवी गुण प्राप्त करने वाले को क्या प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। और असुरी वाले को क्या होता है,
बंधन में फंसते हैं,
वो बंधन में फंसता है। सो संपत्ति शब्द का अर्थ होता है कि जिसको आप कंट्रोल करते हो, दैट टू संपत्ति प्रपस से देवी और आसुरी। सो नाउ वॉट एवर यू लाइक यू कैन टेक इट, इट्स अप टू यू। इट इज नॉट फॉरबिडन, कि ऐसा नहीं है कि केवल एक क्लास का लोग के लिए देवी गुण है और दूसरे क्लास के लिए आसुरी गुण है, ऐसा नहीं है। भगवान सबके लिए है और सबकी भगवान सबकी संपत्ति है। कृष्ण इंडियन नहीं है, कृष्ण हिंदू नहीं है, कृष्ण सबके लिए है। और लिबरेशन का अर्थ क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, इसको लिबरेशन कहते हैं, ये मुक्ति है। सो इसलिए प्रभुपाद एक जगह ये भी कहा था कि अगर यू नो मेलबोर्न में प्रभुपाद 1975 में एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा था कि हाउ कैन आई बिकम सिंसियर, मैं सिंसियर कैसे बन सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आप हाउ कैन यू बिकम अ ड्रंकर्ड, तो ही सेड दैट आई कैन बिकम ड्रंकर्ड बाय एसोसिएटिंग ड्रंकर्ड। एंड प्रभुपाद सेड द सेम वे, यू कैन बिकम, यू ट्राई टू बी सिंसियर बाय एसोसिएटिंग दोज हु आर सिंसियर। अगर आप निष्ठावान बनना चाहते हो तो ऐसे निष्ठावान भक्तों का संगति करो। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण एनकरेज अर्जुन बाय टेलिंग हिम दैट ही वॉज नॉट बोर्न विद डिमोनिक क्वालिटी, हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फाइट वॉज नॉट डिमोनिक बिकॉज ही वॉज कंसिडरिंग द प्रोज एंड कॉन्स, ही वॉज कंसिडरिंग विद रिस्पेक्टेबल पर्सन सच एज भीष्म एंड द्रोण शुड बी किल्ड और नॉट। सो ही वॉज नॉट एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, फॉल्स प्रेस्टीज और हार्शनेस, देयरफॉर ही वॉज नॉट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द डीमन। सो तात्पर्य प्रभुपाद इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। नाउ भगवान अभी छठे श्लोक में अपनी समरी खत्म करते हैं, फिर सातवें श्लोक से फिर देवी प्रकृति शुरू करेंगे। छठा श्लोक पढ़िए।
इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बता चुका हूँ, अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो।
यस, तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, यू कैन डू दिस पैराग्राफ, The conditioned living entities are divided into two classes.
इस संसार में बस जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति देवी के लाभ की है। जो शास्त्रविद विधानों को नहीं मानता और अपनी सनत के अनुसार कार्य करता रहता है वह असुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है, एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते।
यस, तो दोनों ही जन्म तो उधर से ही हुआ है, प्रजापति से, लेकिन एक मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। प्रभुपाद इसके कनेक्शन में एक लेक्चर में प्रभुपाद बता रहे थे बोथ द थिंग्स। सो एक होता है असुर लोक और होता है देव लोक। सो देवासुर फाइट, यू हैव हर्ड ऑफ द देवासुर संग्राम, सुना होगा आपने ऐसे प्रभुपाद से दिस। सो देर आर मेनी पीपल हु डू नॉट लाइक अस बिकॉज वी आर प्रीचिंग गॉड कॉन्शियसनेस। कई ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते भक्तों को, क्योंकि हम प्रचार करते हैं। इवन भारत में भी सरकार जो आजकल अधिकतर आसुरी बन रही है, और इसका परिणाम यह आता है कि वो देवी प्रकृति वाले लोगों को पसंद नहीं करते। दे विल टॉलरेट ऑल काइंड ऑफ नॉइस, सब प्रकार का नॉइस, कुत्ते का भौंकना, मोटर कार का पीप पीप आवाज, मोटर कार पासिंग, एयरप्लेन का और एयरप्लेन ओवरहेड, ये सब कुछ वो लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन एस सुन एज यू स्टार्ट कीर्तन तब वो पसंद नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दिस अकर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। प्रभुपाद ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क में इस संस्था की स्थापना की थी, शुरुआत किया था। सो हम सुबह सात बजे लेक्चर रखते थे, तो थोड़ा सा हल्का सा आवाज आता था तुरंत और दूसरा टेनेंट आ जाता था बोलने के लिए कि बंद करो, कहीं तो पुलिस को फोन करता था वो, और पुलिस आ जाती थी। सो इस तरह से सेकेंड एवेन्यू में बिग बिग ट्रक्स, मोटर कार गोइंग पास्ट, हैवी साउंड्स, यू नो सेकेंड एवेन्यू आप देखना अभी, आप कभी भी अमेरिका जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, सेकेंड एवेन्यू आज भी बहुत ही बिजी स्ट्रीट में माना जाता है, बिजी स्ट्रीट, कि उस पर हमेशा दिन रात व्हीकल होते ही है उसके ऊपर। सो उसको आवाज सहन कर सकते हैं, बट एज सून एज दे लिसन हरे कृष्णा दे नो इमीडिएटली दे दैट्स इनटॉलरेबल, बिकॉज दे कैनॉट टॉलरेट एनी गुड थिंग, कोई अच्छी चीज वो सहन कर ही नहीं सकते। आसुरी जो होते हैं उनको भगवान का नाम बोलने से, यू नो इफ यू से हरे कृष्णा दे विल से सेम टू यू, अगर आप बोलोगे हरे कृष्णा तो वो हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, वो आपको सेम टू यू बोल देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने हरे कृष्णा गलती से बोल दिया तो मेरा उद्धार हो जाएगा, भक्त बन जाएगा। वो इतने भयभीत होते हैं, कई बार आप देखना अगर आप कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो भगवदगीता आप दूर रखो दूर रखो उसको, पास में मत लाओ, मुझे छूने की तो बात छोड़ा, हम कहते अरे लेना नहीं लेना मत लेना, लेकिन कम से कम एक बार देखो तो सही, एक बार बुक खोल के देखो तो सही, नहीं नहीं दूर रखो, आई हैव सीन दैट, उसको दूर ही रखो, मुझसे पास में लाना ही मत। दे आर सो स्केयर्ड, प्रभुपाद से दैट आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई नो दैट इफ यू गो टू एनी हॉन्टेड हाउस, अगर किसी भूत बंगलों में आप चले जाते हो, अगर आप हरे कृष्ण जप करोगे तो उन सबको चले जाना पड़ेगा, दे हैव टू गो, दे कैन नॉट टॉलरेट। प्रभुपाद कहते थे कि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, जब मैं गृहस्थ आश्रम में था तो मेरा बिजनेस लखनऊ में था, लखनऊ में प्रभुपाद जाते थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा मकान था और उसका किराया हजारों में था उस समय, जैसे समझ लो कि अगर आज के समय में देखा जाए तो कोई 70-80 हजार लाख रुपए जितना किराया था एक बंगले का, यू नो लाख डेढ़ लाख रुपए ऐसा समझ लो, तो वो इतना किराया था उस समय। और प्रभुपाद ने कहा कि तो फिर इधर कोई रहता नहीं है, लेकिन पूरा बंगला हॉन्टेड है, यहाँ पर बहुत सारे भूत हैं, इसलिए कोई आता नहीं, तो फिर प्रभुपाद ने कहा तो फिर आप कितने में दे सकते हो मुझे? बोले आप कितना दे सकते हो? प्रभुपाद ने कहा मैं 200 रुपए दे सकता हूँ। बोले ठीक है ले लो, 200 रुपए में दे दिया। तो किसी ने बोला भी वो मकान मालिक ने कि कैसे आदमी हो तुम, 200 रुपए में कोई देता है इतना बड़ा बंगलो किराए के ऊपर? तो उस मालिक ने कहा बोले भूतिया है, वहां पर कोई आता नहीं है, ये आदमी तैयार हुआ है उसको दो ना, और ऐसे धार्मिक प्रकृति वाला आदमी लग रहा है अभय बाबू, तो उनको देने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद भूत भगा देगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं चला गया रहने के लिए, वहां पर कुछ लोग नौकर आस पास में रखे प्रभुपाद, सब नौकर कंप्लेन करते थे स्वामी जी यहाँ पर भूत है, यहाँ पर भूत है, यहाँ ये है वहां, और ऐसी ऐसी घटनाएं बता रहे थे, इधर हुआ ये हुआ उधर ये हुआ ऐसे। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ मुझे पता पड़ा कि वहां पर भूत है, मैं जब कर रहा था वहां पर, और मैंने उन लोग का स्थान भी ढूंढ लिया घर में कि कहाँ कहाँ रहता ही है भूत घर में, और विशेष करके गेट के पास रहता था। जनरली भूत लोग गेट के पास रहना पसंद करते हैं, दरवाजा होता है ना उधर ही रहना उनको अच्छा लगता है भूतों को। ऐसे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सूर्यास्त के बाद भूतों की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन वैष्णव को कोई समस्या नहीं है इस चीज को लेकर के। सो दरवाजे के पास रहते थे ये लोग। तो प्रभुपाद बोले मैं जान गया कि ये लोग इधर रहते हैं, तो मैं चैंटिंग करके उधर उधर जाता था, जानबूझ के उधर ही जाता था कि जब करता है जब करते करते गेट के पास ही चला जाता बार बार। सो हर एक व्यक्ति इस तरह से रक्षित हो गया। 1969 में प्रभुपाद लैनन के आ गए, जॉन लैनन लंदन में। तो लंदन में उसका घर के पास में एक जगह था, प्रभुपाद वो देना चाहते थे, वहां पर एक आदमी था, उसने कंप्लेन किया कि रात को मैं सो गया तो मुझे ऐसा हुआ, उसको खींच लिया किसी ने रात को ही। तो ऐसे बहुत सारी तरह घटनाएं बताई। तो प्रभु स्वामी जी आप कुछ मंत्र वंत्र जानते? प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ थोड़ी देर उधर कीर्तन करके आओ। और कीर्तन करने गए, वहां कीर्तन किया तो भूत भी कोई छोटा मोटा नहीं था, वो भी स्ट्रांग था कोई। तो वो क्या कर रहा था, भक्तों का सांस रोक लिया, तो भक्त को सफोकेशन होने लगा, ऑक्सीजन कम हो जाता है, कैसे हो जाता है जैसे सफोकेटिंग होने लगा। लेकिन वो लोग समझ लिया ये सही में ये था, वहां पर कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन गुरु प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, कीर्तन करते रहो। तो कीर्तन करते रहे, फिर एक भक्त दौड़ करके प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद कहेंगे प्रभुपाद वहां पर तो सफोकेशन हो रहा है, सांस बंद हो रही है, क्या किया जाए? प्रभुपाद ने कहा शंख बजाओ, कीर्तन करो साथ में शंख बजाओ, और भगवान को अर्पण किया हुआ जल है वो ले जाओ और घर में सब जगह छिटक दो। तो प्रभुपाद सेड व्हाई इज टॉकिंग अबाउट सच थिंग, प्रभुपाद सेड वेयर देयर इज हरे कृष्णा घोस्टली हॉन्टेड पीपल या आसुरी प्रकृति के लोग, ये लोग रह नहीं सकते उधर, दे कैनॉट सर्वाइव देयर, वो रह नहीं सकते। कई बार भक्त लोग कहते हैं, दीक्षित भक्त भी कहते हैं प्रभु हमारे यहाँ भूत है, अरे मैं यार तुम दीक्षा ले लिया है, सोला माला जप करते हो, घर में भगवान का पर फिर भी बोल रहे हो कि हमारे घर पे भूत है। कई बार एक न्यूज में हमारे न्यूज़पेपर में आया था बहुत समय पहले कि इस्कॉन मंदिर में भूत है, अपने मंदिर में ऐसा न्यूज में आया था। यस यस ऐसा किसी ने बोला था। और यो ना मैंने कई बार हमारे भक्त लोग भी हमारे मंदिर में रहते हैं ना, कुछ भक्त भी आके मुझे कहते हैं प्रभु ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप तो मत भयभीत हो जाओ, अगर वो कहीं चलो कोई आता भी है तो आप क्यों भयभीत होते हो, तो आप चैंटिंग करो उसका उद्धार करो। सो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जो डेमोनिक लोग होते हैं वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। प्रभुपाद तात्पर्य में एक जगह ये लेक्चर में एक जगह कहे कि प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, प्रवृत्तिम का अर्थ होता है जो स्वीकार करना, निवृत्तिम का अर्थ होता है उसका त्याग करना। चॉइस हमारे सामने होती है, जैसे एक सुअर होता है उसके सामने आप हलवा भी रखो और स्टूल भी रखो तो वो ऑटोमेटिकली क्या लेगा स्टूल लेगा आप, लेकिन उसको हलवा नहीं लेगा, मनुष्य हलवा लेगा। आप किसी डिवोटी को चाय ऑफर करो तो चाय नहीं लेगा, है ना, लेकिन आप और किसी को चाय ऑफर करोगे तो उसको लगेगा कितना सम्मान, कितना रिस्पेक्ट दिया मुझे, नो यू ऑफर्ड मी टी। हाँ बोलिए।
2009 से 2017 तक में जो कंपनी कहा था, जो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे जाना पड़ा, तो हर बार नहीं होता, हर बार नहीं होता। अभी नया एटमोस्फेयर होता था तो मैं एक ही काम कर रहा, जहाँ ले जाओ जहाँ जाओ वहाँ भगवदगीता रखता था, साथ में बीड़बेर रखता था, रात को सो जाओ तो अभी गर्म नहीं रखता था कि हर बार। और कई बार ऐसी ऐसी कंप्लेन हो, कोई नीचे कोई नया कस्टमर आया तो बोले यहाँ वो भूत तो नहीं है ना। अच्छा। ऐसा ऐसा मुझे भी सुनने को मिलता था बराबर। तो लेकिन फिर भी मैं कोई भी होटल में जाता था, लेकिन मेरा यही हॉबी था भगवत गीता बाजू में रखने का, डिब्बे रखने का, और इतना लगे पहले दो दिन तो यार गले में नहीं रख के सो जाने का बराबर। और दूसरा प्रभुपाद जी का जो वो जो मंत्र जो चैंटिंग है ना हरे कृष्ण हरे, वो चालू करके सो जाने
का। यस ये सही बात है। इसलिए एक्चुअली ऐसे हमारे लाइफ में तो ऐसे कई घटनाएं बीती है, कई बार ऐसे कंप्लेन लेकर डिवोटीज भी आए हैं, कई बार मुझे पहले से ही बोल दिया गया था कि इस स्थान पे पहले प्रभु जी यहाँ पर भूत है, पहले से ही मुझे बोल दिया गया था, फिर भी मैं उधर रहा था उसी बिल्डिंग में। तो ऐसा कोई नई बात नहीं है, बट प्रभुपाद से दैट एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग इज कॉल्ड प्रवृत्ति एंड निवृत्ति। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया चाय और चाय वाला, तो नाउ द पॉइंट इज एक्सेप्टिंग समथिंग एंड रिजेक्टिंग समथिंग। इस सबके सामने होता है, सबके लिए, मनुष्य के लिए, पशुओं को लेकर सबके लिए, एक्सेप्ट समथिंग एंड रिजेक्ट समथिंग, ये सबके लिए होता है। बट वॉट टू एक्सेप्ट एंड वॉट टू रिजेक्ट, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ये हमें समझना चाहिए किसको स्वीकार करना है और किसका त्याग करना है, और वो प्रिंसिपल हमें समझना चाहिए। वो प्रिंसिपल समझने का सिंपल सोल्यूशन है, डिवोटीज कैसे एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से बदल जाए। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना। प्रवृत्ति क्या है? एक चींटी, उसके सामने शुगर का टुकड़ा पड़ा है तो दौड़ करके उसके पीछे जाती है खाने के लिए, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। और निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? निवृत्ति का अर्थ होता है कि इंद्रियों को वश में लाना, तो इसको बोलते हैं निवृत्ति। अदांत गोबीर, अदांत गोबीर, जैसे अलग अलग प्रकार की योनियां होती है, उस तरह से तमोगुण या तमिश्र नारकीय योनि भी होती है, नरक नरक में रहने का भी होता है। लेकिन दोनों रास्ते आपके सामने खुले हैं। प्रवृत्ति मार्ग स्वीकार करोगे अर्थात इंद्रिय भोग का मार्ग स्वीकार करोगे तो नरक का मार्ग आपके सामने खुला है। अगर आप निवृत्ति मार्ग स्वीकार करोगे तो आप आध्यात्मिक प्रगति कर पाओगे। सो कृष्ण भावनामृत निवृत्ति मार्ग सिखा रही है। प्रभुपाद सेड देयर आर सो मेनी नोस, नो इलिसिट सेक्स, नो मीडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। सो दिस इज नो पाथ। व्हेन वी से सो मेनी नोस, दे थिंक दैट वी आर ब्रेन वॉशिंग। उनको लगता है कि हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक भक्त ने मुझे अभी कहा था एक लेक्चर में कि प्रभु जी, हमारा एक दीक्षित भक्त ये बता रहा है कि बोले ये नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ये सब बोल करके वो एक प्रकार का हिप्नोटाइज कर रहे हैं ना इस्कॉन वाले। इनिशिएटेड ड्यूटी बता रहा था ये, दैट मीन्स वो बेचारा समझा ही नहीं, दीक्षा ले लिया या उसको किसी ने दिलवा दिया दीक्षा, लेकिन अभी तक ये समझ ही नहीं रहा है कि ये क्यों कर रहा है ये, ही डजंट नो दिस थिंग। सो इस तरह कई बार हम कहते हैं भक्तों को, भाई आप दीक्षा के लिए इतना फोर्स मत करो किसी को, दीक्षा बस हो गया तो दीक्षा लेना ही पड़ेगा, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, ये फोर्स मत करो। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भक्त का काम किसी को दीक्षा दिलवाना नहीं है। भक्त का काम कोई एजेंसी नहीं है कि मेरे गुरु का कितना चेला बनाता हूं मैं, ये एजेंसी नहीं है गुरु की। भक्त का काम है किसी को हृदय परिवर्तन करना, उसको जब वो समझ जाएगा कि चार नियम मैं पालन क्यों कर रहा हूं, और खुद समझेगा तो वो दीक्षा लेगा ही ना। हो सकता है उसको कई बार उसको एनकरेज किया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि आपको दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन उसको हो गया मार के मियां नहीं बनाना चाहिए कि नहीं तुम बैठकर तुम्हें दीक्षा लेना ही पड़ेगा, इस प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। यस,
ब्रेन वॉशिंग तो करना ही है,
ब्रेन वॉशिंग इज देयर, प्रॉपर एक्सेप्टेड,
वॉश तो करना ही है,
क्यों कचरा भरा पड़ा है तो साफ तो करना ही पड़ेगा, वॉश तो करना ही पड़ेगा।
नाश करना है थोड़ी जगह कोयले को धोकर सफेद नहीं किया कोयले को ज्यादा धोना ठीक नहीं है थोड़ा सा
एक्चुअली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर फॉलोइंग दिस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अगर आप इसको नहीं समझते तो केवल फ्लो में बह जाने से आप आगे जाके अटक जाओगे
दीक्षा को लोगों ने बड़ा एक रिचुअल मान लिया है ऐसा रिचुअल मान लिया है कि जिम्मेवारी कोई नहीं और सारे लाभ अपने आप मिल जाए और ये पूरे समाज में फैला हुआ है सामूहिक दीक्षा हो जाती है और भी टेलीफोन पे दीक्षा हो जाती है तरह तरह की दीक्षा
माइक में हो जाए फुक मार के
तो उसमें करके सब पे एकदम
कृपा
बरस पड़ती है
एक्चुअली अधिकतर केस में दीक्षा काल से नहीं समझते लोग यस इसको बंद कर सकते हो दरवाजा हाँ
तो
आपको
ऐसा नहीं लगता है कि दीक्षा एक
फैशन
है
अधिकतर केस में मटेरियल वर्ल्ड में सोसाइटी में दीक्षा का अर्थ लोग नहीं जानते कि दीक्षा क्या होता है वेल दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर वी आर डिस्कसिंग नाउ लेकिन द पॉइंट ये है कि दीक्षा का जब तक कोई व्यक्ति उसका अर्थ ना समझे उसकी जिम्मेदारी को ना समझे और उसके प्रति वो अपनी कमिटमेंट ना बताए हालांकि वो कमिटमेंट कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं है छोटी सी कमिटमेंट है नो इलिसिट सेक्स नो गैम्बलिंग नो मेडिटिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन और सोलह माला जप करना और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना शास्त्र को पढ़ना बस ये दो चार बातें है कि जो उनको लाइफ टाइम करनी है इतनी छोटी कमिटमेंट तो एक साधारण मनुष्य को करना चाहिए अगर ये चार नियम का पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसको मनुष्य कहना उचित नहीं रहेगा फिर वो पशुतुल्य आदमी बन गया फिर वो पशु जैसा आदमी है इसलिए दीक्षा लेना ये बहुत ही आवश्यक है दीक्षा के बिना आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती दीक्षा तो परंपरा से जोड़ने का काम करता है लेकिन दीक्षा का अर्थ समझे बिना किसी को दीक्षा जबरदस्ती दिलवा देना आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट एक डिवोटी शाम को 5:30-6 बजे वृंदावन में दरवाजा खटखटाया आई टोल्ड दैट राइट दरवाजा खटखटाया दरवाजा खोल के देखा अंदर आके बहुत भयभीत लग रहे हो प्रभु जी क्या बात है अरे प्रभु मैं क्या पूछो मत मैं कैसे आया हूँ कैसे आया मीन्स बोले मैं दीक्षा से भाग के आया हूँ मैं क्या बता रहे हो आप दीक्षा से भाग के आयो बोले मुझे किसी ने जबरदस्ती दीक्षा में बिठा दिया था चद्दर बदर डाल करके बैठना ही पड़ेगा और मैं दीक्षा यज्ञ से कैसे भी करके वहां से हट गया और भाग करके इधर आ गया तो मैंने कहा फिर क्यों ऐसा क्यों किया बोले मैं अभी तैयार नहीं हूँ फिर तो क्यों बैठ गए बोले जबरदस्ती बिठा दिया बोले मैं तो गुरु को पहचानता भी नहीं हूँ तो कौन है गुरु सो द पॉइंट इज दैट डोंट ट्रीट पीपल like this, इसे परिणाम गलत आएगा सो देर आर सो मेनी नोस इट इज रिकमेंडेड ऐसा नहीं है कि ये गलत है रिकमेंडेड बट वेन यू से नो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ये तुम लोग सब में ना बोल देते हो दे गेट एंग्री गुस्सा हो जाते प्रभुपाद से मूर्ख योपदेशो ही प्रकोपाय न संतय मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से वो प्रकोप ही करता है वो समझता नहीं है मूर्ख व्यक्ति को अगर आप कुछ अच्छी बात बताओगे ना तो गुस्सा हो जाएगा जैसे शाम को बोलेगा बोले मैं तुम्हें रोज एक कप दूध दूंगा तुम ये सबको डांसने का काम छोड़ दो तो क्या करेगा रोज एक कप दूध तो पिएगा लेकिन फिर ज्यादा डांस देगा क्योंकि उसका विश और ताकत और ज्यादा खाए इसलिए बेटर यही है कि उसको तड़पाया जाए फिर प्रॉपर ने कहा कि स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है स्वच्छता होना आवश्यक है क्योंकि देवी गुण में आता है ये क्योंकि प्रॉपर के छोटे से छोटे गांव में भी आप भारत में जाओगे तो लोग स्वच्छ कपड़े पहनते हैं शौचम पवित्रता एग्जाम्पल दिया एक बार प्रॉपर विदेश में थे तो प्रॉपर ने कहा कि फर्स्ट क्लास ब्राह्मण सुची मीन्स फर्स्ट क्लास ब्राह्मण प्रभुपाद से कि तुम्हारे क्रिश्चियन ब्राह्मण ये क्रिस्ती ब्राह्मण जो है उनके जो से बोले तुम लोग खा करके हाथ भी धोते नहीं हो, लेकिन फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बहुत स्ट्रिक्ट होता है, सूची में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जैसे जूठे हाथ, कई बार हम लोग वैष्णव को बताते हैं कि जैसे जूठे हाथ प्रसाद खाते, जैसे हमने प्लेन में हमने देखा है कई बार वो क्या करते हैं समोसा या कुछ भी एनीथिंग दे ईट, कुछ खाते हैं तो वो क्या करते हैं टिश्यू निकालते हैं। विदेश में तो हर सब जगह आपने देखा होगा यू हैव सब जगह टिश्यू निकालते हैं, बस एक पेपर निकालते हैं और पेपर से हाथ साफ करके फेंक देते हैं पानी से। अमेरिकन लोगों को पानी से बहुत एलर्जी होती है और पानी देख के भयभीत हो जाते हैं उनको तैरना अच्छा लगता है लेकिन शरीर पे पानी नहीं छूना चाहिए। सो ये सूचि बहुत आवश्यक है, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण मस्ट बी। जैसे जब मैं छोटा था बहुत 13-14 साल का, एक बार मैं लेक्चर में बैठा था, जोशीमती रंजन प्रभु लेक्चर दे रहे थे, उस समय मैंने सुना था कि अगर आप मुंह में हाथ डालते हो, मुंह में ऐसे हाथ डालते हो, फिंगर डालते हो मुंह के अंदर, और फिर अगर आप उसको धोते नहीं हो तो यू आर एज गुड एज चांडाल। आप चांडाल, चांडाल का कुत्ते को खाने वाला, यू आर एज गुड एज चांडाल। तब से मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुंह में हाथ नहीं डालूंगा, अगर मुंह में हाथ डालना ही पड़ा तो तुरंत हाथ धो दूंगा। सो ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण का बिहेवियर होना चाहिए, यू नो दिस इज रिक्वायर्ड। निवृत्ति मार्ग, इफ यू स्टिल रिमेन इन प्रवृत्ति मार्ग विल नॉट मेक एडवांसमेंट, वी डू नॉट मेक एडवांसमेंट इफ वी आर इन प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में क्या होगा, तथा देहांतर प्राप्ति। फिर प्रभुपाद एक पॉइंट ये भी बताया है कि शौचम नापि चाचारो न सत्यम। दिस इज नेक्स्ट श्लोक द प्रभुपाद यस दिस लेक्चर इज फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 7। सो एनीवे दिस प्रवृत्तिम निवृत्तिम चीज प्रभुपाद you know, I was just मेरे नोट्स में 6 में डाल दिया मैंने, I'm sorry। सातवां हो रहा था बस, yeah, so I just finished this 7th also, maybe आप translation पढ़ लीजिए सातवां।
जो आश्री हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है।
आचार विचार, विचार मीन्स कंसिडरेशन, जस्ट लाइक विचार पंडित, अगर किसी को बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है कि सही क्या है गलत क्या, दो पार्टी को सुनकर के हाईकोर्ट जज क्या करता है कि विचार करके जजमेंट देता है, लेकिन वो सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन आचार तो सब कर सकते हैं, जैसे 4:30 बजे उठना, मंगला आरती करना, माला का जप करना, ये तो सब कर सकते हैं, इसको आचरती। प्रैक्टिकली यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू प्रीच, यू कैन नॉट बिकम आचार अंटिल यू बिहेव अकॉर्डिंगली। आपको पहले उसका आचरण करना पड़ता है। और सत्य का अर्थ होता है कि आप करते हो कुछ और बोलते हो कुछ, ये नहीं चलेगा। अगर आप करते हो कुछ और बोलते हो कुछ तब आप आसुरी प्रचारक बन जाते हो, आसुरी श्रेणी में आ जाते हो। तो इस तरह से भक्तों को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ में शास्त्र के विचार को समझे बिना कोई व्यक्ति कार्य करता है तो असुरी माना जाता है। सो बट एनीवे देयर आर मेनी पॉइंट्स टू डिस्कस इन दिस श्लोक, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम और आई कैन जस्ट टॉक अबाउट ब्रीफली। सो ये जो लोग होते हैं उनमें वो केवल शरीर के आधार पर कार्य करते हैं, उनमें श्रद्धा नहीं होती है, शास्त्र में भी श्रद्धा नहीं होती है, एंड दे आर फॉलोइंग ओनली बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। हर एक वस्तु शरीर के आधार पर कार्य करते हैं, और कभी कभी वो लोग फिलोसॉफी भी बोलते हैं, लेकिन उनकी फिलोसॉफी का कोई वैल्यू, वो आत्मा स्वार्थ से प्रेरित होती है। वो एग्जाम्पल आपको पढ़ा होगा आपने जैकल का और वल्चर का। एक बार क्या, वो एक बच्चा था छोटा मर गया था, तो उसके पेरेंट्स वहां पर आए थे, रो रहे थे, तो स्मशान के पास उसको, तो जैकल वहां पर एक आया, जैकल लोमड़ी, जैकल आकर के कहा कि देखो तुम लोग सही में रो रहे हो, ये रोने जैसा ही अवसर है, ये बच्चा बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था, इसके बहुत सारे अच्छे गुण थे, और सब बताने लगा कि ऐसे महान आत्मा का माँ बाप होना बहुत गौरव की बात है, आप बड़े भाग्यशाली माँ बाप हो, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो, इतना अच्छा अवसर है, आपका पुत्र शरीर त्याग कर दिया है, आज के दिन आप उसकी चेतना में ध्यान करो, उसका विचारो, उसका विचार करते रहो और ध्यान करो, और कल सुबह फिर आ जाना, और फिर कल सुबह तुम इसका अंतिम संस्कार करना, आज मत करना, सूर्यास्त तक वेट कर लो ऐसे। तो इस प्रकार से बताया माँ बाप, उसके माँ बाप को, और वहां पर एक ऊपर से देखा यहाँ पर कोई घी, ये डेड बॉडी पड़ा है, तो ऊपर से एक वल्चर आया, उसने ऊपर से देखा और आकर के बोला, आत्मा बोलो अमर है, शरीर नश्वर है, इतना चिंता मत करो, इतना रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी बात मत मानो जैकल की, ये इसमें तुम्हारा लाभ नहीं है, बेस्ट यही है कि इतना इसके प्रति आसक्ति छोड़ दो और अपने अपने घर चले जाओ। तो ये दोनों ही गलत थे, क्योंकि जैकल का इच्छा ये था कि तुम लोग चले जाओ, रात के रात में मेरा फिश खा लूंगा, रात में खा जाऊंगा इसको, और वल्चर जो था वो भी फिलोसफी जान रहा था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, बोले तुम सब तक चले जाओ तो मैं अभी लंच ही ले लेता हूँ इधर। तो ये दोनों ही गलत विचार वाले थे। सो इसके विषय में आचार विचार के विषय में हमने चर्चा की, एंड देन वी विल टॉक नेक्स्ट टाइम अबाउट द फर्दर पॉइंट्स फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 8 ऑनवर्ड्स। ओके, एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न? Okay, so we stop.